हमारे मन की बातों को भी जान करके उनके तरफ में देखते ही नहीं है, इसके दोषों को विचार ही नहीं करते। वो विचार करते हैं कि इसमें क्या क्या गुण है और उस गुणों को ठाकुर जी की सेवा में लगा देना चाहिए और ऐसा ही करते। जिसका जैसा गुण है उसको ठाकुर की सेवा नहीं अच्छा कर प्रसाद पाओ। देखते हैं कि भाई जब बाहर में जाते हैं तो दसवां चारवीं कराना चाहिए। कल हम लोग गए तो वहां पर कितने आदमी बाहरी लोग थे, नगण्य थे, और हम लोग गए और जाकर के कीर्तन किया, एकदम जम गया खूब खूब, सभी लोग मिलकर के कीर्तन किया और कह रहे थे जो आए वो रमन टावर के मालिक थे जो कार में हमको ले आए, कह रहे थे भाई आप लोगों ने तरंग बरसा दिया एकदम एकदम सभा को एकदम कैसे आप लोगों ने बदल दिया, कीर्तन के माध्यम से पहले ही हो गया। अच्छा मान लिया कितने आदमी थे, सब लोगों ने कीर्तन किया तभी तो ऐसा हुआ। वैष्णव लोग जो है गुणग्राही है, देखा जैसे यदि कहीं जाना तो अंत तो हम संख्या में तो बढ़ाई देगा। हमारे गुरु जी थे, एक अर्ध विक्षिप्त लड़का आया, अर्ध विक्षिप्त समझते हो ना, अर्ध पागला, अर्ध पागला थे, लंबा सा, धोती पहनने का भी सहूलत नहीं, सहूलत नहीं मैंने समझते धोती पहन रहा है और खसक रही है, कहाँ जा रहा है कहाँ क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। तो गुरु जी के पास में जाकर के चरणों में लेट गया, अजय कहाँ से आया तो मेदिनीपुर से, कहाँ का रहने वाला, किस गांव का, तो गांव का नाम भी बता, अरे कैसे चला आया घर छोड़कर, तो कह दिया जब भजन कर ठीक मत में रहो खाओ। नरसिंह महाराज जी को जानते हो ना, नरसिंह महाराज जी कुछ देर के बाद में आए, चार पांच दिनों के बाद आए, इसको किस लिए रख दिया, ये तो टट्टी करने के बाद में हाथ पे आजना भी नहीं जानता है और कोई काम नहीं कर सकता, थाला भी नहीं माज सकता, झाड़ू भी नहीं ये दे सकता, बैठा रहता है चुपचाप, प्रसाद खा लेता है बैठ जाता है, इसको किस लिए आपने रख लिया। गुरु जी ने कहा हमारे यहाँ पर बैगन लगाए गए हैं बगीचे में, थोड़ा सा जगह है और फूल लगाए हैं, ये बंदरों का बड़ा उपद्रव है, यहाँ बंदर आते हैं झट तोड़ ले जाते हैं, तो उसको बैठा देंगे वहां तो अंततः बंदर देखेंगे एक आदमी बैठा हुआ है वो नहीं है, तो इतना तो लाभ होगा। और हम लोग का जो कुछ बच जाता है वही खा लेता है, रहने दीजिए जब तक ये रहता है तब तक इसके कानों में भगवान का नाम पड़ेगा और कुछ न कुछ जरूर करेगा, चुपचाप बैठ नहीं सकता, कुछ न कुछ करेगा, पागल होने पर भी कुछ न कुछ वो करेगा ही, पागलपन तो करेगा ही, एक लठिया लेकर के तो चलेगा तो बंदर लेकर के भगेंगे। नरसिंह मजा के आपको प्रणाम है, कैसे गुणग्राही होते हैं। और ऐसी बात नहीं होती तो हमारे गुरु जी और सब जितने वन महाराज हैं, माधव महाराज हैं, बहुत से मठ बना लिया और लाखों रुपया एकत्र कर लिया तब मठ छोड़ा, बहुत से मठ बना लिए, बहुत से शिष्य हो गए और काफी रुपये जम गए, दो चार दस लाख रुपये, तब मठ को छोड़ा, कोई बैकग्राउंड अपना बना लिया। और हमारे गुरु जी क्या किया, एक पैसा भी कभी जीवन में नहीं रखा अपने पास, सब समय अकिंचन करने, मठ को जब छोड़ना हुआ किसी कारण से बाध्य होकर के खाली हाथ आए और उनके साथ में पचासों आदमी सब चले। गुरु जी ने कहा अब ये समस्या है, इनको प्रसाद कहाँ से आया, तो चिंता कर रहे थे, पैर पर पैर रख करके ऐसे ऐसे पैर बुलाते हुए गंभीर रूप से, बस चिड़िया ने ऊपर से एक पोटली फेंक दी तो झन्न बजा, तो पोटली उनके हाथ के पास में आई तो खोल कर देखा जो सात आना की छ आना पैसा, पैसा होता था ना पहले तांबे का पैसा, बड़े प्रसन्न हुए। और एक वैष्णव आ गए थे उनको सम्मान करना था, वो संदेश का छेने का संदेश खाते थे, और बड़े मिठाई और स्वादिष्ट की बातें, तो उससे छ माने में उस समय में छ संदेश मिल गया और उनसे उनकी भरपूर सेवा की। और इतने में प्रभु जी ने एक जगह से 1 रुपए का मनी ऑर्डर दिया। ऐसे गुणग्राही इसलिए उन लोगों ने रखा और ऐसी मठ की स्थापना की और जिसमें हम लोग जैसे लोग कहाँ कहाँ से आ करके और भगवान का भजन कर रहे हैं। अब तो दूसरों से भी करा रहे हैं कुछ कुछ। वैष्णव लोग गुणग्राही होता है, ग्राही माने ग्रहण करने वाला होता है, उसके दोषों को नहीं लेंगे जो अर्चनकारी में है और उस पर कृपा करके उसको सुधार करके चित्त सुधार करके और आगे बढ़ा उनका कल्याण। यदि छोड़े नहीं तो अब बीच में यदि छोड़ दिया तो मरा। हरिनाम करते समय अपराध भले ही हो जाए किंतु नाम नहीं छोड़े। वैष्णव के प्रति कभी मानने की अवज्ञा नहीं हो गई किंतु उस वैष्णव की अवज्ञा होने मानने की कभी हो गई वैष्णव को मत छोड़े, लगा ही रहे। कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे उपलब्धि हो जाएगी, अनुताप होगा और सब कुछ बन जाएगा। उन्होंने कहा भक्त लोग भगवान की सेवा में जो विलंब होता है ये छोड़ने ये सहन नहीं कर पाते। अभी तुमको चुपचाप बैठो, तुम इधर उधर मत डालो, बैठो चुपचाप। उनको विलंब सहा नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं मिलने पर बड़े दुखी हो जाते। विशेष करके भक्ति राज्य में ऐसी कुछ बातें हैं जिसको प्रकाश के रूप में नहीं कहा जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता और इसीलिए शास्त्रकारों ने उसका वर्णन नहीं किया। जब शास्त्रकार लोग ही अनुभवी पुरुषों ने वर्णन नहीं किया तो साधारण लोग भी उसको क्यों कहें। साधारण माने असाधारण जो है भजन पारायण है उत्तम महाभागवत वो लोग भी नहीं। कैसे? एक साधारण सी बात है, कृष्ण का भजन करने से आदमी निर्धन हो जाएगा और उसकी घर में जितनी भी संपत्ति है वो संपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। जिस चीज पर उसकी आसक्ति है वो सब कुछ। अब इसको ये बात सत्य है कि झूठ है? परम सत्य है। यदि मान ले कि हम इसको कहें यहाँ पर तो हम समझते हैं कि कोई भी नहीं सुनेगा, दो एक आदमी हैं स्त्रियों में दो एक वो सुनेगी और पुरुषों में भी जो बाहर वाले हैं वो सब चले जाएंगे, केवल छठे हुए जो संसार को छोड़ करके आए हैं कोई नहीं, बाकी सब चले। इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं बहुत थोड़े रूप में इन चीज को बतलाया और बतलाया। जैसे उद्धव जैसे व्यक्ति हैं ब्रज में गए और कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, कृष्ण के लिए देह दैहिक सब जो कुछ छोड़ दिया है, सर्वस्व अपना छोड़ कृष्ण के लिए, पथ का भिखारी या भिखारिणी बन गई और दिन रात कलपती है कृष्ण के लिए और कृष्ण उन पर दया नहीं कर रहे, ये कोई आदमी देखेगा तो कोई भजन करेगा? उद्धव ने ये अपनी आंखों से साक्षात रूप में देखा। नंद बाबा यशोदा जैसा कौन भगवान का प्रेमी होगा और वो दिन रात विलाप करते हैं कि हाय हाय कृष्ण कहाँ, कृष्ण के लिए विलाप करते हैं। वसुदेव देवकी कुछ दिन ही रोए और ये लोग कितना दिन रोए, जब तक जीवित रहे तब तक रोए। और जो कोई भगवान का भजन नहीं किया बड़े आनंद से सुंदर घर में सुंदर गृहस्थी पुत्र पौत्रों से धन संपत्ति से युक्त होकर के बड़े ठाट के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनमें जरासंध, रावण और ये सब है। अरे मरे तो 10-15 दिन की युद्ध में ही तो मरे, या कितने दिन का युद्ध हुआ, थोड़े से एक वर्ष भी नहीं हुआ, बाकी इतना काल लाखों वर्ष रावण ने जो भोग भोगा वो किसी के लिए संभव है? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख सन्यासी, इतने और सोने की लंका, देवता लोग उसके घरों में ऑर्डर सप्लायर है, जरासंध भी ऐसे, दुर्योधन भी कम सुखी नहीं था। तो देखते हैं कि ये लोग तो बड़े सुखी हैं। और नंद बाबा को देखो, घर उजड़ गया है, घर में रसोई नहीं हो रही। नंद बाबा दिन रात रोते हैं कृष्ण कृष्ण, सोच रहे हैं कृष्ण को मैं भूल जाऊं। अब ये बतलाओ, दुख, ये दुख देख करके कोई कृष्ण का भजन करेगा? और शास्त्रों में इसे ऐसा लिखा जाएगा, बड़ी चालाकी के साथ में लिखा है, इसलिए अनाधिकारी बात इसको जानेगा और जानते हैं, इसलिए दुर्गा की, कंकाली जी की, अधिक से अधिक गणेश जी की, शंकर जी की, अधिक से अधिक लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते हैं। भागवत के पूरे विद्वान कल जिनके पास हम लोग यहाँ पर गए थे, बड़े विद्वान आदमी, भागवत वक्ता भेज करके उन्होंने अपना घर बनाया, घर जोड़ा, विवाह हुआ, शादी हुआ, उसी भागवत को कह करके, सब कुछ है। किंतु भागवत का जो अंतिम युद्ध है क्या गोपी प्रेम है? गोपी के प्रेम के बदले लक्ष्मी नारायण 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 जी कहते तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, सूर्य नारायण नारायण, मतलब फिर क्या हुआ? जानते हैं कि कृष्ण का भजन करने से हम दरिद्र हो जाएंगे और ऐसी दुर्दशा है, इसलिए भजन नहीं करते, बड़ा भारी कठिन है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि तुमको बतलाने में मुझे कुछ संकोच हो रहा है। सबसे अधिक कृष्ण को जो प्रेम करता है, सबसे अधिक वो सबसे अधिक रोता है, और उस रोने को कहते हैं विप्रलम्ब रस। उस रसपस को लोग साधारण आदमी क्या समझेगा, वो तो देखेगा जरूर रहा है, इसलिए रो रहा है, रोने में कोई विशेष अमृत रस भरा पड़ा है, ये उसके दिमाग में नहीं आएगा। बड़े बड़े लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं आएगा जो उस रोने में क्या आनंद है, किस लिए वो कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं रोने के लिए। हम लोग को जिस दिन थोड़े से आंखों में आंसू भर आए तो सोचते हैं कि आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, रोना आने की तो बात दूर है। और सचमुच में तो आंखों में हे प्रभु कृपा करो, और तो कोई अभी आंसू आने का कोई कारण नहीं। यदि कीर्तन करते करते करते, श्लोक पाठ करते 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 अपनी हीनता का अनुभव की हुई और आंख से एक आंसू की बूंद जैसी भी, हाँ गो नित्यानंद असंध्या जी आज कुछ भजन किया। किंतु बाहरी लोग जो हैं, जो भक्त नहीं, कृष्ण के इन दुखों को देख करके वही कह रहा था, राधा जी का प्रेम की महिमा देखा उद्धव जी ने, गोपियों की प्रेम की महिमा देखा, और नंद बाबा यशोदा जी की महिमा देखा, ऐसा प्रेम जगत में नहीं है। किंतु जल्दी से चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, कहाँ चलना चाहिए, जहाँ पर कृष्ण हरि हैं, मुकुंद जी हैं। कौन मुकुंद? मुकुंद वो मुक्तिं ददाति इति मुकुंद, जो दुखों से छुटकारा देते हैं। ये तो दुखों से इनको छुटकारा नहीं दे सके, दिन रात विलाप कर रही हैं और कर रहे हैं। भाई यदि ऐसी दशा हो गई मेरी भी तो न जाने क्या होगा, चलो तो जल्दी से चले कृष्ण के पास है, जहाँ पर भी कृष्ण उनकी कहीं कृपा से वंचित न हो जाए। अच्छा कृपा से वंचित हो जाना तो गोपियाँ कृपा से वंचित है, जब दिन रात ही रो रही हैं तो कृपा कहाँ हुई। कृपा तब होती यदि कृष्ण निकट आ जाते, किंतु इस चीज की उपलब्धि नहीं है जो उनके भीतर में कृष्ण का मिलन है। और वह भी प्रलंबा रस जो है संभोग रस से भी कितना ऊंचा है, इसलिए कहते हैं कि इस चीजों को मैं अधिक वर्णन नहीं करूंगा, किंतु तुम्हारे अंदर में इस चीज की बीज है, इसलिए तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम तो रोना चाहता है, तुम तो उनसे मिल करके उनको छाती से लगाना चाहता है, तुम उनका चुंबन चाहता है, तुम उनका जीठा ईठन खाना चाहता है, तुम उनको घोड़े बना करके उन पर चढ़ना चाहता है और खुद घोड़े बन करके कृष्ण को चढ़ाना चाहता है सख्त भाव से। ये सब बातें शास्त्र में नहीं लिखी जाती, ये अनुभूति की बातें, इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इसमें अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो और लोग की तो बात क्या है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं लगेगा, हो गया ठीक 5-6 बजे ही बात होता है, 1 घंटा से अधिक मत हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उपसंहार अध्याय का करने जा रहे हैं, कन्हैया भाई जी वो जो प्रेम है वो साधारण नहीं है, उसको समझना भी साधारण लोगों के लिए नहीं है, तुम असाधारण प्रेम चाह रहा है, वो असाधारण प्रेम यहाँ नहीं है, इसलिए तुमको भाई अच्छा नहीं लग रहा। असल बात मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं है, यहाँ देख रहा हूँ कि नारायण जी, उनका कोई परिकर नहीं है, इसलिए चुपचाप तुमको बतलाया। अभी और भी थोड़ी सी बातें हैं, इसके बाद में अध्याय समाप्त होगा। उस प्रेम की कौन प्रेम की, ब्रज प्रेम की बातें कृष्ण संबंधी बातों को बतलाएंगे, ये कितनी दुर्लभ वो चीजें, तुम उस दुर्लभ चीज को पाने के लिए बैकुंठ में संभव पर नहीं, इसलिए तुम्हारा मन नहीं। इसके बाद में हम लोग कल भी दिन है, परसों हमारे गुरु महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, प्रकट तिथि, जिसको हम लोग व्यास पूजा करते हैं। 3 दिन का हम लोगों का समारोह गुरु जी के समय से ही होता है। गुरु जी अपने जन्म के दिन में गुरु परंपरा और वैष्णव की पूजा करते थे, अपने गुरु जी की और गुरु जी के गुरु जी की, उनके गुरु जी की, एकदम कृष्ण तक जितनी परंपरा में है व्यास नाथ सबकी पूजा करते थे। और दूसरे दिन प्रभुपाद जी के लिए लिख करके और गुरुजी के लिए लोग लिख करके लाते थे ना? और उनकी महिमा, ये गुरुजी कैसे कृपालु हैं, उनकी महिमा क्या है, उसका पाठ होता था और लोग उसके संबंध में वक्तृता करते थे। और तीसरे दिन प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न वैष्णव लोग उनके चरणों में कथा रूपी पुष्पांजलि देते थे, और जो लिख करके ले आते थे प्रभुपाद जी के संबंध में वो लोग सब बोलते थे उनकी महिमा कैसे प्रचार किया, उनका तत्व क्या है, भगवान के कैसे प्रिय हैं, जगत में उन्होंने क्या दिया। आप लोग भी पहले दिन हम लोग के गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि होगी और उनके संबंध में कुछ कुछ कहना होगा, आप लोग भी प्रस्तुत होकर के आएंगे, और उस दिन जो कुछ होगा हम लोगों के अनुसार क्षमता के अनुसार में हम लोग ठाकुर जी की सेवा करेंगे, गुरु जी के आराध्य की और भोग देंगे, सभी लोग यही प्रसाद पाएंगे दोपहर को, और हरि कथा सुनेंगे। जिनको हरि कथा सुनना है वो तो 9-10 बजे तक जरूर आए, और जिनको केवल चतुर्विध प्रसाद अन्न का रसास्वादन करना है वो लोग 1 बजे आएंगे, 1-1.5 बजे तक आए आने से चल सकता है, उसमें हरी कथा नहीं होगी, जब पुष्प दे करके और बैठ जाएंगे, पुष्प देने की भी जरूरत नहीं होगी, बस प्रसाद पान। और जिनको कुछ हरी कथा श्रवण करना है, कुछ सेवा भी उसमें करनी है, उसे सुकृति होगी, भक्ति होगी, वो पहले आ जाए 9-10 बजे। 10 बजे से हम लोग भाषण के चरणों में पुष्पांजलि देना, गुरु तत्व की महिमा इत्यादि का वर्णन करेंगे, और आप लोग भी अपने अपने गुरु जी के संबंध में कुछ लिखेंगे, जरूरत होगी तो उसको हम लोग भेज देंगे। और हम लोग के जो गुरु भाई हैं अपने गुरु जी के संबंध में बोलेंगे, लिखेंगे, विचार करेंगे। और तीसरे दिन उसका हम लोग पाठ करेंगे, दूसरे दिन। और तीसरे दिन प्रभुपाद के संबंध में आप लोग कुछ जो बोल नहीं सकते कुछ लिख करके, हिंदी में हो, बंगला में हो, संस्कृत में हो, किसी भाषा में नहीं, पहले ऐसा होता था, धीरे धीरे ये सब उठ गया। तो इस प्रकार से व्यास पूजा आप लोग करेंगे। व्यास पूजा मैंने गुरु की गद्दी पर जो बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण के उन्मुख बना रहे हैं, उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शन करना है। ये मन के द्वारा, लिखने के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में इसको किया जा सकता है। इसका नाम है व्यास पूजा। तो हम लोग व्यास पूजा 3 दिन के लिए करेंगे। आप लोग उसमें सब सहयोग दान करेंगे और सभी लोग आएंगे, सभी लोग को हरिनाम और मठ के आश्रित हैं, सभी लोग आएंगे 3 दिन और भगवान की चर्चा, गुरु वैष्णव की चर्चा, उनकी महिमा का हम लोग
माखन की।